ओम शांति। बड़ी बेसब्री से इंतजार था भाई जी का। कल मैं देख रहा था कि कल जब भाई साहब की अनाउंसमेंट हुई कि भाई साहब आने वाले, तो सबके चेहरे बड़े खिल गए थे, और खासकर यहाँ जो टीचर बहने थी वो तो काफी खुश हो गई कि तो भाई साहब आपका इंतजार 28 तारीख से ही हो रहा था, तो जाते जाते ये मौका मिला, है ना। तो भाई साहब को तो सभी पहचानते ही होंगे, सभी, है ना। सोचिए संगम युग में सबसे भाग्यवान वे हैं जो जिनके नाम के साथ मुरली जुड़ी हुई है, है ना। हाँ, तो ऐसा परम सौभाग्य भाई जी का है जो अव्यक्त बाप दादा की वाणी चल रही है और दूसरे दिन सुबह रेडी आपके हाथ में है ना। और बाबा भी देख देख के, कई बार बाबा ने भाई साहब के लिए मुरली के दौरान ही काफी कुछ कही, तो हमें ये दिखता है कि बाबा कितने प्यार से भाई साहब को देखते रहते हैं टाइप करते हुए। तो भाई साहब का जन्म जो है वो उत्तर प्रदेश कानपुर के बहुत छोटे से गांव में, शायद आज भी वहां लाइट नहीं है, तो मास्टर ज्ञान सूर्य कहां से बाबा ने चुन के निकाला, है ना। और 1960 माने आपके लौकिक पिताजी माताजी काफी धार्मिक आध्यात्मिक काफी रुचि थी उन्हें, तो आपके घर में ही ब्रह्मा बाबा मम्मा दादियां 1960 में सारी वहां की जो सेवा है यूपी की वहां से ही स्टार्ट हुई। हाँ, तालियां थोड़ी बजाइए आप। और भाई साहब 1971 में पहली बार सेवा में मधुमन आए, माना उस समय भाई साहब की उम्र शायद 16 साल की अल्प आयु, और भाई साहब आने के बाद वापस नहीं जाने का उन्होंने बिल्कुल ठान लिया, लेकिन दादियों ने प्यार से, छोटी उम्र थी कि थोड़ा पढ़ाई पूरी करें, लेकिन फिर भी भाई साहब 72 में आके पूरी तरह से समर्पित रूप से। फिर 76 में ही दादियों ने उस समय आपकी जो, शायद दादियों को पहले से ही, दादियां तो अनुभवी हैं, उन्होंने आपकी बुद्धि की जो दिव्यता है, वो निर्दोष भाव जो है आपके अंदर जो, वो उन्होंने पहचान लिया था। तो उस समय ही दादियों ने भाई साहब को सिंधी मुरली को हिंदी में कन्वर्ट करके टाइप करना और वो सारा संग्रह करना 1976 में। भाई साहब की उम्र थी शायद 19-20 साल, उस समय इतनी बड़ी जिम्मेवारी, और भाई साहब ने सिंधी सीखी, सिंधी सीखकर सारी हिंदी में कन्वर्ट करके, अनुवाद करके, टाइप करके संग्रह करना। और फिर जो भी दादियों के नाम से पत्र आते थे, माने यज्ञ की कितनी गोपनीय बातें और सब, तो कितना दादियों का फेथ था भाई साहब के ऊपर, तो उसका आंसर देना उस समय से ही भाई साहब के द्वारा ही होता रहा। और पत्र पुष्प सुनाते होंगे सेंटर पे आपके, तो पूरी जो भी बाबा की प्रेरणाएं हैं, ईश्वरी महामाक्यों का संग्रह है, और मुरली में जो आप इतना सुंदर धारणा का सार, वरदान, स्लोगन है ना, वो भाई साहब ही कंपोज करते हैं, क्योंकि रियल जो साकार वाणी थी उसमें इस तरह से धारणा का सार और वरदान स्लोगन नहीं था, वो फिर मुरलियों से धारणा का सार निकालना, वरदान और स्लोगन निकालना। तो ये भाई साहब, हम लोगों को तो मनन करना पड़ता भाई साहब की तो ये सेवा ही है इतने वर्षों से, तो आप समझ सकते हैं कि भाई साहब के पास कितना खजाना होगा, है ना। तो बहुत बहुत हमारे लिए सौभाग्य की बात है, सभी एक हाथ से भाई साहब का दिल से वेलकम भी करेंगे, तो अभी हम भाई साहब से सुनेंगे। ओम शांति। ओम शांति। ज्ञान सरोवर, और उसमें भी ये स्थान जहां पर आप भट्टी कर रहे हैं, जैसे कहते हैं कि तपस्वी गुफाओं में बैठ करके तपस्या करते थे, तो आपको एक गुफा मिली है, आवाज की दुनिया से दूर, एकांतवास। सभी ने बहुत अच्छी भट्टी कर ली, आज लास्ट दिन है ना। मुझे जब बताया, मैं उस समय हैदराबाद में था, फोन आया कि आपको ओआरसी के भाई बहने आए हैं, भट्टी है, क्लास कराना है। मैंने कहा मैं 31 तारीख दोपहर तक पहुंचूंगा, तो कल शाम को मुझे विशेष फोन आया कि आप सवेरे आ जाओ, तो आप सबसे मिल करके मुझे भी बहुत खुशी है। दादी जानकी जी को मैंने कहा, दादी दिल्ली के भाई बहने आए हैं, अब मैं उनसे मिलने जा रहा हूं, तो कहती मुझे क्यों नहीं बताया, मैं भी चलती।
आप लोग दादी से नहीं मिल पाए ना, दादी आपको बहुत याद कर रही थी। आज शायद वो अहमदाबाद के लिए निकल जाएंगी, लेकिन जब मैंने कहा मैं वाराणसी के भाई बहने आए हैं, मुझे वहाँ क्लास कराने जाना है, पहले पूछे क्यों जा रहे हो माउंट आबू, अब नीचे सब रहते हैं ना, समझते नीचे ही सब रहे, हमने बताया कि ऐसे ऐसे है, तो दादी ने आपको बहुत बहुत दिल से याद दी है, कहने लगी अंगूर ले जाओ सबके लिए। अंगूर तो आते हैं यहाँ पर, अपने ही खेती के शांतिवन के अंगूर हैं, तो शायद मिले हों या मिलेंगे, सब जगह आते हैं अंगूर। तो ड्रामा अनुसार ये भी आप सबका भाग्य है, जो ठंडी की सीजन में और विशेष करके जनवरी मास में आप सबने मधुबन का लाभ लिया। वैसे तो वाराणसी में प्रोग्राम चलते रहते हैं, तो आजू बाजू के सभी भाई बहने यहाँ पहुंचे, अच्छे अच्छे अनुभव बाबा ने कराए होंगे, क्योंकि चारों तरफ तपस्या की बहुत अच्छी लहर चल रही है। पूरा ही जनवरी मास कई स्थानों पर अखंड भट्टियां चली हैं, और हर एक ब्राह्मण आत्मा बाबा के इस अव्यक्ति मास को तपस्या मास, वरदानी मास के रूप में मनाते हैं। अंतर्मुक्ता की गुफा में रह करके एक बाबा से दिल की बातें करते रहना, बाबा भी कहता है बच्चे विशेष जनवरी मास में वरदाता बाप से बहुत से वरदान ले सकते हो, तो आप सबने वरदानों से अपनी झोली भरी होगी। मुझे दो तीन टॉपिक सुना रही थी बहन जी, तो मैंने कहा ठीक है सब टॉपिक मैं ले लूंगा, क्योंकि जो टॉपिक्स उन्होंने दिए वो एक से कनेक्टेड थे। एक कहा कि कर्मयोगी जीवन कैसे रहे, दूसरा कहने लगी कि अशरीरी स्थिति का अभ्यास कैसे करें, तीसरा कहा कि वृत्ति से वायुमंडल कैसे बनाए। तो ये तीन टॉपिक मुझे चुनने के लिए दी कि जिस पर भी आप क्लास कराना चाहें वो करा लेना, तो मैंने कहा ठीक है मैं तीनों पर ही क्लास करा लूंगा। त्रिमूर्ति तो साकार सृष्टि की विशेषता क्या है? साकार सृष्टि की विशेषता है कर्म, इसको कहा ही जाता है कर्म क्षेत्र। इस कर्म क्षेत्र पर कर्म के बिना हम नहीं रह सकते, रह सकते हैं एक सेकेंड भी नहीं रह सकते, क्योंकि शरीर मिला बाजा मिला तो सांस लेना भी कर्म हो गया, बोलना खाना पीना रहना सब कर्म ही है। तो कर्म क्षेत्र पर हम आए हैं, कर्म संबंध में आए पहले, फिर कर्म बंधन बन गए, और इस समय हम सबको कर्मयोगी बन करके कर्म बंधनों को काटना है, क्योंकि कर्म संबंध में तो शुरू से जब से आत्मा आई बिना संबंध के पाठ नहीं बजा सकती। अवतरण हुआ तो मां मिली, पहले पहले कहां आएगी, शरीर का संबंध बनने लगा, तो संबंध बनते बनते उस समय संबंध सुख देने वाले थे इसलिए संबंध थे, कलयुग में संबंधों में दुख है इसलिए बंधन बन गए। अब संगम युग पर बाबा कहता है कि कर्म संबंध कर्म बंधन जो भी बनाए योग बल से हमको काटते चलो, कर्म तो करना ही है, कर्म के बिना तो रह नहीं सकते, कर्म संन्यास ही नहीं। अगर कोई कहे मैं कर्म संन्यासी हूं तो बाबा उस बात को खंडित करता है, कहता कर्म संन्यास हो ही नहीं सकता है, वो लोग समझते हैं हम भोजन नहीं पकाते हैं, कुछ काम ऐसा नहीं करते, इसलिए हम कर्म सन्यासी हैं। लेकिन बाबा के तरह खाते तो हो, नहाते तो हो, बोलते हो, चलते हो, सब कर्म ही तो है। कर्म के बिना तो कुछ भी नहीं हो सकता। तो इसलिए कर्म सन्यास होता ही नहीं है। इस कर्म सन्यास को संगम युग पर हम सब ने कर्म योग कहा है। बाबा के साथ अगर बुद्धि की तार जुटी हुई है, कर्तापन का भान नहीं है, कराने वाला करा रहा है, कर्मयोगी हो गए। और आज बड़ा अच्छा वरदान बाबा ने दिया, अकाल तख्त पर बैठ करके कर्म इंद्रियों से कर्म कराओ। कंट्रोलिंग पावर, रूलिंग पावर, अगर कंट्रोलिंग पावर और रूलिंग पावर है, कर्म इंद्रियों को हम अपने कंट्रोल से चलाते हैं, आत्मा मालिक बन करके इन कर्म इंद्रियों से कर्म कर रही है, तो कर्म योगी सहज बन सकती है। यही योग है। तो कोई भी कर्म हो, कोई कर्म छोटा और बड़ा नहीं होता। ये कर्म मैं न करूं, ये स्थूल कर्म है, ये भोजन बनाना, झाड़ू लगाना, ये काम करना, ये सब स्थूल कर्म है। लेकिन कर्म में कोई भी कर्म हो, चाहे स्थूल कर्म है, चाहे वाचा द्वारा कर्म करते हैं, चाहे मनसा द्वारा करते हैं, कर्म तो कर्म ही है। और हर कर्म की मार्क्स कई बार बाबा ने सुनाया है, समान है। अगर वो कर्म बहुत दिल से, प्यार से, रुचि से किया जाता है, लगन से किया जाता है, तो उस कर्म की बहुत अच्छी मार्क्स जमा हो जाती है। अगर कोई बोझ समझ के करता है तो मार्क्स नहीं बनती और बोझ बनता जाता है। इसलिए जो कर्म जिसको मिला है, कोई छोटा बड़ा कर्म नहीं है, और सबको एक जैसे कर्म नहीं है, सबके अलग अलग हैं। लेकिन कर्म करते हुए भी कर्तापन के भान से आत्मा मुक्त होकर के रहे, कर्म फल की इच्छा से मुक्त होकर के रहे। फल की इच्छा रख करके कोई कर्म करेंगे तो कर्म बंधन का रूप बन जाएगा। इसलिए बाबा ने गीता में भी एक महावाक्य आए हैं कि बच्चे कर्म करो, लेकिन कर्तापन के भान से परे होकर के करो। कोई भी कर्म आपको बांध न दे बंधन में, उसके लिए आत्मिक स्थिति का अच्छा अभ्यास हो। मैं मालिक होकर के इन कर्म इंद्रियों से कर्म कराऊं। दो करावनहार हैं, एक बाबा करावनहार है जो मुझे आत्मा से करा रहा है, और एक मैं आत्मा करावनहार हूं जो इन कर्मेंद्रियों से करा रही हूं। अगर ये डबल करावनहार की स्मृति रहती है तो करावनहार आत्मा कर्मेंद्रियों से कर्म करते हुए भी अलग महसूस करती है, कर्मेंद्रियां उसे नहीं करा पाती। आजकल की जो स्थिति है वो है कर्म इंद्रियां आत्मा से कर्म करा रही हैं। माना मन इतना गुलाम बन गया है, मेरा ही बज रहा है, स्विच तो आप किया था, पावर आप में भी बोलता है क्या? तो कर्म इंद्रियों से कर्म कराना, कर्म इंद्रियां मुझे आत्मा से कुछ न कराएं। आजकल की दुनिया में जितने बुरे कर्म, पाप कर्म होते हैं, अगर उसके पीछे उनसे पूछो करने वाले से, तुमने क्यों किया, तुम तो बड़ा समझदार है, फिर ये कर्म क्यों किया, तो क्या कहता है? मैं चाहता नहीं था, पर वश होकर के कोई ने जैसे मेरे से करा लिया। आज जितने अपराध हो रहे हैं, अगर किसी जेल में जाएं, आप कहीं भर भी जाएं और कैदियों से बात पूछें कि भाई तुम ये क्यों किया, कैसे किया, तो एक बार तो उसे मुझसे यही निकला था, निकलेगा कि मैं चाहता नहीं था, मेरे से हो गया। यह है परवश स्थिति। मैं गुस्सा करना नहीं चाहता था, मुझे गुस्सा आ गया, माना कर्मेंद्रियों ने करा लिया। एक बार मैं एक स्थान पर गया, बड़ी जेल है, तो वहां पर बाबा का एक मेडिटेशन रूम बना है, बनाया था, तो उसका उद्घाटन था। तो उसके जो मुख्य थे जेलर वगैरह, तो कहने लगे आपने कभी जेल देखी है? मैंने कहा नहीं। कहते चलो मैं आपको पहले जेल घुमा के लाता हूं। बहुत बड़ी जेल थी, तो सबसे पहले एक स्थान पर ले गया, वो बच्चों की बाल कैद, बच्चे कैद, इसी इतने बड़े हाल में ही करीब 450 बच्चे जेल में थे, बाल सुधार लिखा था। तो जब उस दरवाजे को खोल के अंदर हम घुसे, तो बहुत छोटे छोटे बच्चे थे, 15 साल के 14 साल के, अंडर एज वाले। तुमने ऐसे अचानक, मेरे बड़ा आश्चर्य हुआ, हमने कहा इनको जेल में तुमने क्यों रखा है, इन्होंने बेचारों ने क्या अपराध किया है? तो मेरे को ऐसे ही बिठा दिया कुर्सी पर, कहते हैं आप इनको बुला के पूछो इन्होंने क्या किया है। तो मैंने कुछ बच्चों को अपने पास बुलाया, कहा भाई कुछ हुआ है, कुछ किया है तुमने, जेल में तुम क्यों रखा तुमको? तो बेचारे रो रहे थे, तो उनके मुख से यही निकल रहा था कि मैं चाहता नहीं था, मेरे से हो गया, ये भूल हो गई, ये ऐसा कर्म हो गया, इसलिए मुझे जेल में डाल दिया। माना कोई भी आज छोटा बच्चा है, बड़ा है, बुजुर्ग है, जवान है, पढ़ा लिखा है, आज जितने विकर्म हो रहे हैं उसका मूल कारण है कर्म इंद्रियां उससे करा रही हैं। कर्म इंद्रियों के इतना आत्मा अधीन हो गई है। हम सबको बाबा ने यही पहला पाठ पक्का करा दिया कि तू आत्मा मालिक है, जो चाहो वो सोचो, जो चाहो वो बोलो, जो चाहो वो करो। इतना अभ्यास योग के लिए, योग के अंदर कर लो कि मैं आत्मा इन कर्मेंद्रियों की मालिक हूं, और सबसे पहली मालिक हूं मन की, क्योंकि मन और कर्मेंद्रियों की बहुत दोस्ती है। अगर मन मेरे कंट्रोल में नहीं आया तो कर्मेंद्रियां मेरे से जरूर कुछ गलत कर्म कराएंगे। इसलिए मन पर बहुत अच्छा शासन चाहिए, संकल्प शक्ति हमारे कंट्रोल में चाहिए। अगर संकल्प कंट्रोल में आ गए, इन पर आपने नियंत्रण पा लिया, कैसे करेंगे, इसको मारना भी नहीं है, इसको दबाना भी नहीं है, हट क्रियाएं भी नहीं करनी है, लेकिन बहुत प्यार से, जैसे बच्चे को समझाया जाता है ना, ऐसे एकांत में बैठ करके इसको समझाओ, इससे बातें करो। अपने को सुधारने का सबसे अच्छा तरीका है अपने आप के टीचर बनो, कोई दूसरा कहेगा तो नहीं सुधरेंगे। भगवान भी कह रहा है फिर भी बड़ी मुश्किल से सुधर पाते। खुद को सुधारना है, खुद से बातें करनी, कहां जाता है, क्यों जाता है, तुझको क्या चाहिए। आपने सुना होगा ब्रह्मा बाबा ने, जब शिव बाबा उनमें आने वाले थे, उसके पहले से पुरुषार्थ किया था, अपनी एक डायरी बनाई थी। लौकिक में जब बाबा के गुरु थे, गुरु के सत्संग में बैठते थे, तो उनका जब मन भटकने लगता था, जब नारायण की भक्ति करते थे मन भटकता था, तो बाबा कभी कभी अपने को चमाट मारता था, ये क्यों भटकता है, तुम भगवान का ध्यान नहीं करने देता, गुरु का ध्यान करने नहीं देता। तो बाबा फिर उसके बाद अपनी डायरी लिखते थे, मेहनत करते थे, हे मन वजीर तुम मेरी बात क्यों नहीं मानता है, तुझको क्या चाहिए, क्यों भटकता है। ऐसे मन से, बुद्धि से, संस्कारों से, कभी आंखों से, कभी मुख से, जो धोखा देता है। कई बार बाबा कहता ना, आंखें बहुत धोखा देती हैं, जिसको देखती हैं उसके ऊपर कभी संकल्प विकल्प चल जाते हैं, कोई अच्छी चीज देखती हैं तो खाने की दिल हो जाती है, मुख भी चल जाता। तो संकल्पों की क्वालिटी को चेक करना है, संकल्प हमारे कितने कंट्रोल में आए हैं। अगर संकल्प पर हमारा शासन हो गया, पहले बाबा कहते थे माया जीते जगत जीत, और अब कहते हैं मन को जीते जगत जीत, पहले नहीं कहते थे ये, क्योंकि देखा कि माया तो बाद में है, पहले मन ही इनके कंट्रोल में नहीं है। तो ये मन पर कंट्रोल के लिए क्या करना है, योगी आत्माएं कर्म कर रही हैं। आप अगर देखेंगे ना, कोई कितना भी अच्छा बुद्धि का भी काम हो, फिर भी मन कहीं ना कहीं और सैर करके आता है। किधर जाता है, क्यों जाता है, साक्षी होकर सिर्फ देखो तो भी वो कंट्रोल में आ जाएगा। कई लोग देखते ही नहीं है कभी भी, योग में बैठेंगे, बैठे यहां है, पता नहीं कहां कहां घूमने गया जा करके, इतने अच्छे वातावरण में भी घूम के आएगा। और अगर योगी आत्मा बस ये ध्यान दे कि नहीं मैं तो अपने इस मन को वाहन बना लूं, इस वाहन से ही मैं जाऊं बाबा के पास, सूक्ष्म वतन में, मूल वतन में, कर्म करते भी बाबा से बहुत मीठी मीठी बातें करूं, मन को बाबा में लगा के रखूं, बाबा को ही याद करूं, बाबा के ही गुणगान करूं, इतना अच्छा बाबा ने हमारी जीवन दी है, इतना श्रेष्ठ कर्म करने की कला सिखाई है, अच्छे कर्म करो, बाबा को समर्पित कर दो, मैंने नहीं बाबा ने करा लिया, ये योगी जीवन है, कर्म योगी जीवन है। तो इसलिए मन के ऊपर नियंत्रण के लिए पहले तो साक्षी दृष्टा बनकर के बहुत स्नेह से उसको देखो, तुम क्यों जाता है, देखते देखते उसे बात करते उसको प्यार करो, भाई तुमको अभी इस समय नहीं कहीं जाना, तुमको यहीं रहना है। जब ऐसे ध्यान से देखेंगे और बात करेंगे ना संकल्प पर, तो वो कंट्रोल में आ जाएगा। और धीरे धीरे फिर इसको अच्छा अच्छा संग दो, संग का बहुत गहरा रंग लगता है। अगर संग की परहेज नहीं करेंगे ना, कोई ऐसे वैसे के संग में बैठेंगे जो पर चिंतन करता है, पर दर्शन करता है, बाबा की मुरली में भी बहुत सारी बातें ऐड करके सुनाता है, ये नहीं होना चाहिए, ये बाबा ने नहीं, किसी ने दूसरे ने कहा, कभी कभी अच्छा संग भी नुकसान करने लगता है। हम ज्यादा संग करेंगे ना, किसी के संग में अधिक बैठेंगे तो अपने प्रभाव, अपने विचारों का प्रभाव जरूर डालेगा, संग का रंग लगता है। इसलिए बहुत ध्यान देना है कि अगर कोई भी दूसरी बातें करे अपनी उन्नति की, परिवार की उन्नति की, सेवाओं की, अगर इसके अलावा कोई बातें करता है तो व्यर्थ है, और उन व्यर्थ बातों को न सुनना है न वर्णन करना है। जिसने पर चिंतन और पर दर्शन, देखना और सुनना व्यर्थ की बातों को बंद कर दिया, उसका मन कंट्रोल में आ जाएगा, क्योंकि वो बातें मन को बहुत प्रभावित कर देती हैं, गहरी छाप पड़ जाती है। मान लो आज कोई बातें करने वाला भी नहीं है, आपके सामने टीवी रखी है और टीवी के अंदर आप न्यूज देख रहे हैं, कोई दूसरा भी इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन वो न्यूज जो बार बार रिपीट हो रही है ऐसे, वो न्यूज भी ध्यान से अगर देखते रहेंगे तो मन के ऊपर उसकी छाप पड़ जाएगी, और बार बार जब बैठेंगे योग में तो बार बार वो संकल्प आएगा, ये न्यूज है, ये समाचार है, ये समाचार है, उसका भी संग लग जाता है। इसलिए बाबा कहता है ऐसी चीजें जो आपकी उन्नति में रुकावट डाल रही है उसका इंटरेस्ट अभी नहीं रखो। अगर कर्म योगी जीवन बनना है तो कर्म भले कोई भी हो, करो सब कुछ, लेकिन जो हमारे काम की चीजें नहीं उनका इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए, उस इंटरेस्ट को अभी दबाना है, समाप्त करना है। तो जब ऐसा मन को अच्छा अच्छा संग और अच्छा अच्छा भोजन, चिंतन का भोजन माना वो स्थूल भोजन भी मन पर प्रभाव डालता है। अगर कोई बहुत घनिष्ठ तला गला इधर उधर का भोजन करने का शौकीन है और इधर उधर के लोगों के हाथ का बनाया हुआ खा लेता है, बाजार का देखा और खा लिया, तो जो बनाने वाला है जिस भावनाओं से बनाता है, जिस प्रकार की उसकी मनोवृत्तियां हैं, उसका भी मन के ऊपर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। इसलिए कहते हैं जैसा अन्न वैसा मन। जिस प्रकार का भोजन हम ग्रहण कर रहे हैं, अगर वो बनाने वाला योगी नहीं है, पवित्र नहीं है, शुद्ध विचार नहीं है, तो उसका भी मन के ऊपर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है, वो हमारे योग को तोड़ देता है। इसलिए कर्म योगी जीवन के लिए इन सब बातों की परहेज चाहिए। संग की परहेज करो, खान पान की परहेज करो, स्थूल में भी कोई ऐसी चीज है मन को न अंदर जाए जो मन को खराब कर दे। कोई देख लिया, कोई पढ़ लिया, कोई ऐसे समाचार सुन लिए, तो वो मन को अंदर अंदर दूषित करते हैं, भावनाएं हमारी गलत कर देते हैं। इसलिए जितना मन शुद्ध होता जाएगा, मन मना भाव, कर्म कर रहे हैं बाबा की याद बनी हुई है, क्योंकि मन हमारे कंट्रोल में है, बीच बीच में पूछ रहे हैं मैं तो जब टाइप करता हूँ ना तो देखता हूँ बाबा की मुरली चल रही है, मैं बाबा को देख भी रहा हूँ, मुरली भी टाइप हो रही है, सब आते हैं, फिर भी कोई अगर थोड़ी भी आवाज कर देता फट से बड़ा भाग जाता है उधर। क्यों जाता है, किधर जाता है, भगवान सामने बैठा है, कंट्रोल आ जाता है। लेकिन थोड़ा सा टेंशन का पहरा चाहिए, बहुत पहरेदार अलर्ट चाहिए, अलवेलापन होगा ना तो पता नहीं चलेगा, भटकता रहेगा इधर से उधर। इसलिए बाबा कहता अटेंशन के चौकीदार बहुत अलर्ट होने चाहिए। चौकीदार होते हैं ना, देखते हैं भाई चोर न घुस जाए तो जगाते रहते हैं, जागते रहो जागते रहो। कोई चौकीदार बहुत होशियार होते हैं, किसी को घुसने नहीं देंगे। तो बाबा भी कहता वो चौकीदारी नहीं करनी, कोई ऐसे स्थूल में चौकीदार इसके लिए नहीं बिठाने, लेकिन बार बार अटेंशन ध्यान दो, इसको कंट्रोल कर लेंगे तो मन के राजा बन जाएंगे, और मन के राजा बन गए तो जो चाहे कर रहे हैं, हाथों से कोई भी काम करो लेकिन दिल में दिलवर बैठा है, दिलाराम बैठा है, बस उसके साथ बहुत स्नेह है, प्यार है, मीठी मीठी रू रिहान है, बातें हो रही हैं, कर्म हो रहा है, बाबा आप करा रहे हो, कितना अच्छा है। कई माताएं इतना प्यार से रोटी बनाएंगी, गोल गोल बनी, कहेंगी वाह बाबा जैसा, बिंदी जैसी बन गई, गोल गोल बाबा भी है, रोटी भी गोल गोल बना लिया। तो रोटी बेलते भी बाबा की याद रह सकती है ना, उसमें कौन सा स्थूल में बुद्धि चलाने की बात है। तो कोई भी कर्म हो, स्थूल सेवा हो या कोई बुद्धि की भी हो, अटेंशन देंगे तो बार बार बाबा की याद बनी रहेगी। अब समय अनुसार बाबा ये चाहता है कि मेरे बच्चे सदा निरंतर योगी बने, लगाने वाले नहीं, योग लगाने वाले नहीं। एक घंटा दो घंटा योग किया, कोई कहता मेरा दो घंटे का योग है तो बाबा कहेगा 22 घंटा किसको याद करते थे, दो घंटा तो मुझे याद करते हो, बाकी किसको याद करते हो। अगर तुम्हारा सच्चा प्यार है, सच्चा सौदा है, तो बाबा के सिवाय और कौन है हमारा। लेकिन उसके लिए कोई सर्किल बनाओ, बुद्धि को मन को कोई सर्किल दे दो कि एक से अगर खिसकता तो दूसरे के अंदर जाए, दूसरे से खिसके तो तीसरे में जाए, बाहर न जाए। जैसे बाउंड्री बना देते हैं कोई, इस बाउंड्री के बाहर गए तो फेल। ऐसे ही मन बुद्धि को एक बहुत अच्छी बाउंड्री दे दो कि इस बाउंड्री के अंदर ही रहेंगे। मान लो मुरली सुन रहे हैं, अब मुरली में भी कर्म तो है, सुनने का कर्म है, कोई नोट्स ले रहे हैं, लिख रहे हैं, सुन भी रहे हैं, लेकिन मुरली सुनते सुनते कईयों को नींद आ जाती है, कईयों की बुद्धि इधर उधर भटक जाती है। अब मुरली सुनते समय अगर ये ध्यान रहता है सुनाने वाला कौन है, व्यक्ति कैसे भी सुना रहा है, कभी कभी वो अपनी एडिशन भी कर दे, कुछ भी कर दे, लेकिन बाबा के महावाक्य मेरे कानों में जा रहे हैं, भगवान मुझे सुना रहा है, बहुत ऊंची भावना से अगर हम सुनते हैं तो ऐसा लगता है जैसे वो सब अंदर जा रहा है, समा रहा है, बहुत अच्छा लगता है। क्वेश्चन नहीं उठते, बाबा ने ये बोला हुआ तो नहीं, बोलता तो है, कैसे होगा। बाबा अगर बोल रहा है, स्नेह दे रहा है, महावाक्य उच्चारण कर रहा है, तो उसके साथ साथ अगर आपकी भावना है तो शक्ति भी दे देगा। तो भावना से सुनो, प्यार से सुनो तो शक्ति भी मिल जाएगी। तो हर कर्म, चाहे सुनने का कर्म है, चाहे कोई कर्म स्थूल में कर रहे हैं, चाहे योग में भी बैठे हैं, वो भी कर्म चल रहा है, बाबा की याद बनी हुई है, तो कर्म में योग और योग के साथ कर्म दोनों एक दूसरे से समान है, अलग है ही नहीं। कर्म क्षेत्र पर कोई भी बैठ जाए 10 घंटा 8 घंटा कहे हम कोई कर्म नहीं कर रहे हैं, उस समय भी कुछ कर्म कर रहा है वो। उस समय अगर कोई संकल्प भी चल रहे हैं, सांस भी ले रहा है, कुछ भी हो रहा है, हलचल भी हो रही है, तो कर्म तो है ना। इसलिए कर्म योगी माना योगी जीवन, बाबा के सिवाय और कोई भी संसार में मेरा नहीं। बाबा को जिसने संसार बना लिया, उसकी बुद्धि अभी अभी ज्ञान चिंतन कर रही। मान लो मुरली के समय ज्ञान का अच्छा अच्छा चिंतन चल रहा है, फिर बाबा से बहुत मीठी मीठी रूह रिहान चल रही है। सर्किल बताता हूँ, कभी मुरली का अच्छा चिंतन करो, अच्छे अच्छे पॉइंट्स पर रमण करो, मनन करो, आज बाबा ने बहुत अच्छा वरदान दिया, आज बाबा ने देखो भूतों को भगाने की कितनी अच्छी विधि बताई, बच्चे वास्तुप जला दो, भक्ति के अंदर कितनी वास्तुप हमने जलाई, वो तो भूत भागे नहीं, वो भूत चलो स्थूल में कोई भाग भी जाए, लेकिन जो अंदर भूत घुस गए हैं उनके लिए तो ज्ञान योग चाहिए। तो ऐसी बाबा की मुरली सुन करके मनन करना, चिंतन करना, यह भी योग है, कर्म में योग है। फिर बाबा से बहुत मीठी मीठी रू रिहान किया, बाबा आप कहां से कहां मैं भटक रहा था, आपने ढूंढ लिया मुझे, किस कोने से ढूंढा, कैसे ढूंढा। बाबा के प्रति कितना प्यार आ जाता है, एकदम आंखें गिल्ली हो जाती, कहां पड़े थे कीचड़ में, बाबा आपने निकाल लिया, इतना स्वच्छ बना लिया। एक जगह पर मैं गया, एक भाई मेरे को मिला, मेरी गाड़ी चला रहा था, तो चलाते चलाते कहता भाई जी मैं अपना अनुभव सुनाऊं। उन्होंने कहा जरूर सुनाओ भाई, हम बैठे हैं फ्री गाड़ी में, चला आप रहे हो भले सुनाओ। कहता है भाई जी जब बाबा मिला ना उसके पहले मैं रावण का भी बाप था। कहता रावण तो कुछ नहीं उसके आगे। मैं क्यों, इतना क्या है, क्या किया आपने। कहता इतना गंदा था मैं, इतने पाप किए, इतना किया, तो लोग मुझे देख के किनारा करके डर जाते थे, सामने भी कोई नहीं आता था, इतना तो मैं शराब कभी कभी पी लेता था जो मैं नाले के अंदर लेटा रहता था, लोग लात मार के चले जाते थे, कुत्ते आके सूंघ के जाते थे, ऐसी मेरी जीवन थी, मैंने डरती एकदम। सुनाता जाए उसकी आंखें गीली हो गई कि बाबा ने मुझे क्या बना दिया। सब लोग ब्रह्मा कुमारियों की बड़ी महिमा करते हैं कि इसको सुधार दिया, मैंने सबको सुधार सकती है, ये सुधर गया। कहती मेरे कोई देखना नहीं चाहता, इतना मैं मैला गंदा था, और आज बाबा मिल गया, मेरा जीवन सुधर गया। तो उसके दिल से निकल रहा था ना, ये बाबा का प्यार नहीं, ये योग नहीं है क्या। ऐसे ही अगर आप सब बहुत प्यार से मीठी मीठी रूह रियान करो, दिल से बातें करो, बाबा कलयुग में जबकि एकदम लोग बह रहे हैं गंदगी में, कीचड़ में, विकारों के अंदर लिप्त हैं, कोई भी मुक्त नहीं है, और ऐसे समय में बाबा हमको गाइड करके मार्गदर्शन देके निकाल रहा है उससे, और कई तो बिल्कुल निकल आए हैं, होगा संकल्प तक आएगा, चलो युद्ध करनी पड़े थोड़ा बहुत, लेकिन निकल को तो आए ना, कीचड़ में भी दलदल में फंसे हुए तो नहीं ना, कोई दलदल में फंस जाए उसको निकाल लिया जाए, क्योंकि दलदल ऐसी चीज होती है, देखा दलदल, देखा है, देखा है, देखो हाथ उठा रही। मैं एक बात दलदल की बात सुनाता हूं, मुझे पता नहीं होता था, मैं जानता नहीं था दलदल क्या होता है। तो एक जगह पर मैं गया एक मंदिर के अंदर देखने के लिए जा रहा था, तो अपनी गाड़ी से गया, लेकिन जब वापस आने लगा तो गाड़ी कुछ खराब हो गई, और मेरा एक जगह पर क्लास था बहुत अर्जेंट, कुछ ही साल पहले की बात है। तो मैंने सोचा चलो एक भाई साथ में था, हमने बस में बैठ जाते हैं, सामान नहीं लिया, गाड़ी में सब छोड़ दिया, और हम बस में बैठे कि क्लास के समय कम से कम बेचारे बैठे हैं इतने सब तो पहुंच जाएंगे। तो हम जा रहे थे, तो जब बस से उतरे ना, तो जहां बस खड़ी हुई उसके बाजू में वो दलदल था, पता ही नहीं था, बिल्कुल सामान था, लेबल था, मिट्टी जैसा ही था, मुझे कुछ नहीं मालूम था ये दलदल है क्या होता है। और ऐसे ही मैं जो उतरा और ऐसे पैर रखा और मेरा पैर एकदम नीचे चला गया, इतना चला गया। वो भाई सामने था, साथ में था, उतरा फट से मेरे को खींचने की कोशिश की, अब मैं थोड़ा भारी भी, तो बड़ी मुश्किल से बेचारे ने ऐसे मेरे को उठा करके निकाला, और सारे कपड़े मेरे एकदम मैले हो गए, गंदे हो गए, और मैं अपना सामान तो सब छोड़ के गाड़ी में आ गया था, अब क्लास क्या करूंगा मैं। तो जब मैं एक नल के नीचे गया, मैंने कहा थोड़ा बहुत तो साफ कर लूं, बहुत गंदा हो गया, दलदल में फंस गया। कहते अगर ये सामने नहीं होता ना, तो एक पैर तो गया था ना, दूसरा अगर चला जाता तो ओम शांति, उसी के अंदर इतना गहरा होता है वो मिट्टी का। तो बड़ी मुश्किल से एक नल के नीचे खड़ा होकर के अपने को साफ किया, और किया तो, लेकिन क्लास करने जैसा तो नहीं रहा, अभी लेट भी हो गया, इतना घंटों जब तक पहुंचूं, सेंटर का क्लास तो पूरा हो गया, फिर भी बैठे थे कुछ लोग भावना वाले थे, अब क्लास क्या कराऊंगा। बहन को बोला हमको गुलदस्ता उलदस्ता नहीं चाहिए, पूरे कमरे में ले जाओ। बेचारे ने अपने कमरे क्या हुआ क्या हुआ, हमने कुछ नहीं हुआ। वहां गया फटाफट वो कपड़े धोए, पहले साफ किए, फिर प्रेस मंगाई, प्रेस किया, एक घंटा तो ऐसे लग गया, बड़ी मुश्किल से ठीक होकर के आया। तो मुझे वो दलदल की बात जब बाबा कहता ना, आज की दुनिया दलदल में फंसी हुई है, तो वो सीन याद आता है, कितने गंदे हो गए सब, कीचड़ में फंसे हुए हैं, बाबा ने हम सबको ऐसा निकाला है। वो दलदल नहीं दिखेगा ना, देखो ना कितना गहरे दलदल से बाबा ने निकाला। कहता कईयों को तो मैंने चोटी से पकड़ के निकाला है, तो चोटी तक दिखता था, बाकी सब डूबा हुआ था, लेकिन कुछ तो दिखता होगा, तब तो बाबा ने निकाला है। तो विकारों के, बुराइयों के कीचड़ से निकाल के बाबा आपने मुझे ऐसा बना दिया। बहुत प्यार से कभी कभी बाबा को खत लिखो, पत्र लिखो, खुदा दोस्त है, देखो कहता मैं तुम्हारा गॉडली फ्रेंड्स हो मेरे, पत्र लिखो प्यार से बाबा को। और ऐसा प्यार से पत्र लिख करके आंखें गीली हो जाएंगी, बाबा के प्यार में खो जाएंगे, रूरियान करेंगे। ये कर्म योग नहीं है क्या? यही योग है, सिर्फ आत्मा हूं, शांत स्वरूप हूं, ये तो ठीक है, ये तो बुद्धि की बात है, लेकिन दिल की बातें क्या है? तो दिल से जो बाबा को बहुत प्यार करता है, याद करता, बाबा उसके साथ साथ रहता, वही कर्मयोगी है, अलग होता ही नहीं है। कहता संगम पर ही तुम बच्चे मुझे अपना साथी बना सकते हो, कंपेनियन बना सकते हो, मैं तुम्हारे साथ साथ रहता हूं, लेकिन इतना प्यार और इतनी सफाई और सच्चाई चाहिए। इतनी ऊंची हस्ती को, परम पवित्र को, अगर हम कहें मेरे दिल में बैठता है, तो कैसे बैठेगा दिल में? दिल अगर साफ है, स्वच्छ है, कोई के प्रति ईर्ष्या नहीं, नफरत नहीं, घृणा नहीं, गंदगी नहीं, तब तो बाबा आकर के बैठेगा। अगर हमने वो सब कचरा भरा हुआ है और बाबा को, बाबा आप आ जाओ मेरे साथ रहो, तो बाबा कहे नहीं, मेरे बस की बात नहीं, बाबा के बस की बात भी नहीं है किसी की गंदगी के आके बैठ जाए। तो इसलिए बहुत ध्यान रखना है कि भगवान को हम अपने दिल में स्थान देना चाहते हैं, उसके साथ साथ कर्म करना चाहते हैं, तो हमारे दिल के अंदर भावनाओं में कोई के प्रति भी नफरत नहीं, ईर्ष्या नहीं, घृणा नहीं, द्वेष नहीं, वैर नहीं, सब अच्छे हैं, सब अच्छे हैं। बहुत अच्छी भावना लेकर के, बहुत शुभ भावना से, अच्छे अच्छे संकल्पों में रमण करो, बहुत भावना पूर्वक बाबा को याद करो, तो बाबा आपके साथ आ जाएगा, हाजिर हो जाएगा, हाजिरा हजूर। बाबा कई बार कहते ना, मुझे पहुंचने में कितना समय लगता है, अरे बच्चे बाबा कहो प्यार से, मैं हाजिर हो जाऊंगा। एक बार ऐसे ही कहा, एक भाई को अचानक कोई ने केस में फंसा दिया ईर्ष्या के कारण, बहुत बड़ा डॉक्टर था, जेलसी के कारण उसको, बेचारे को ऐसी कैद दिया, ऐसी जेल में फंसाया जो कभी वो जमानत पर भी छूट नहीं सकता था। वो बाबा का बच्चा था, तो लोगों ने समझा ये हुआ क्या, इतना अच्छा डॉक्टर, इतनी अच्छा ब्रह्मा कुमारी में जाने वाला, अच्छे कर्म करने वाला, फिर भी इसको जेल क्यों हो गई, और ऐसी जेल जो जमानत भी न मिले। तो उसी दिन बाबा को याद तो कर रहा था, बाबा आए थे यहाँ शांतिवन में ही, तो बाबा ने अचानक मुरली में कहा, बच्चे तुम दिल से बाबा कहो, बाबा हाजिर हो जाएगा। तो वो लाइन सुनाने के लिए किसी ने रिकॉर्ड करके बाबा को, उसको भाई को सुनाई जा करके, सचमुच उसने इतनी प्यार से कहा, बाबा ये क्या हो गया, दिल से। कहता कुछ घंटों के बाद एक नोटिस आई गवर्नमेंट की कि उसको क्यों फंसाया गया, उसको छोड़ दो, वो निर्दोष है। कैसे उसको नोटिस आई, किसने उसको नोटिस दिया, कुछ पता नहीं, लेकिन एकदम लेटर आ गया कि उसको निर्दोष है, उसको ऐसे ही फंसाया गया झूठे केस में, उसको छोड़ दो, जबकि उसकी जमानत भी नहीं हो सकती थी। तो कहने का मतलब है कि बाबा तो सर्वशक्तिमान, सर्व समर्थ है, और कई बार हमारे भाई बहने ना फंस जाते हैं, फंसने का कोई कारण नहीं, कुछ तो हिसाब किताब होगा ही। एक जगह मैं और गया था, एक भाई था, बहुत अच्छा मारवाड़ी परिवार है, उसने बहुत बड़ी जमीन कई करोड़ों की अपने भाइयों से अपना हिस्सा था दे दिया बहनों को, भाई यहां पर आप डेटेड सेंटर बना लो। पहले तो उसकी पत्नी बहुत अच्छी सनेही थी, बहुत सहयोगी थी, फिर बाद में चिढ़ गई कि ये क्या हुआ, ब्रह्मा कुमारी में सब दिए देता है, चिढ़ गई। तो चिढ़ने के बाद दूसरों को साथी बना लिया उसने, और साथी बनाने के बाद एक ऐसा केस डाल दिया कि इस माई के साथ, एक नौकरानी के साथ इसके गलत संबंध है, और उसने उसको कैद कर दिया, जेल में फंसा दिया। वो लड़की भी मान गई, वो भी जाओ वो दे दिया जा करके, वो दे दिया, बयान दे दिया कि हाँ मेरे साथ इसने ऐसा किया। और बेचारा इतना ईमानदार, इतना सच्चा, इतना झूठा केस में फंस गया जा करके। और इसके केस का ऐसे कैदी अगर जाते ना जेल के अंदर, तो उनको बहुत गंदी नजर से लोग देखते हैं वहां, कहते हैं बहुत अपमान करते हैं वो, कैदी लोग ही मारते हैं। तो जब वो गया जेल में, वो इतना दुखी, इतना परेशान कि बाबा ये क्या हो गया मेरा, मैंने तो कभी कुछ किया ही नहीं ऐसा कुछ। कहता है 10-12 दिन मैंने पहले ही कहा, जानते तो सब थे अच्छा रायल आदमी है, ऐसा नहीं करेगा, लेकिन अभी फंस गया। कहता है कि मैंने कहा मैं भोजन त्याग नहीं करूंगा, कुछ भी हो जाए, और मुरली के बिना नहीं रह सकता मैं। ये दो चीजों की डिमांड किया उसने वहां। जेलर अच्छा था, समझदार था कि कोई कारण भी हो सकता है। उसने इन दोनों चीजों को छुट्टी दिया, भोजन भी सेंटर से जाने लगा और मुरली भी रोज मिलने लगी उसको। कहता मैं 12 दिन तक जेल में रहा, लेकिन वो सजा मेरे को भूली नहीं जाती। लेकिन 12 दिन के बाद जब उसकी जांच की गई, तो ड्रामा अनुसार जिस घड़ी, जिस टाइम उसने लिखवाया था इस टाइम मेरे साथ ऐसा हुआ, उस टाइम को चेक किया गया, और वो टाइम हमारे सेंटर की CCTV में वो सेवा कर रहा था, दिखाई दिया। CCTV लगी थी कैमरे की, कैमरे चेक किए गए, उसने बोला मैं इस टाइम तो सेंटर पर था, जब सेंटर पर था तो सेंटर की वीडियो चेक की गई, चेक की गई तो वहां सचमुच उसी टाइम बैठा हुआ था। उसी समय उसको छोड़ दिया गया, छूट गया एकदम, कुछ नहीं हुआ, निर्दोष साबित करके, और कभी उस पर केस न किया जाए सिर्फ, यह भी एक लिखित में मिल गया। तो मैं कहता हूं कि बाबा अपने बच्चों की रक्षा करता है लेकिन परीक्षा भी लेता है। लेकिन डरना नहीं चाहिए, कुछ भी होता है ना तुरंत घबरा नहीं जाओ, भगवान को एकदम गालियां नहीं देने लगो, भगवान मैंने तो तेरे लिए इतना किया, तूने तो मुझे कुछ नहीं किया। बहुत धैर्यता के साथ, बहुत शांति के साथ, ऐसी कोई घटना हो जाए, बाबा आप साथी हो मेरे, मैं अगर सच्चा हूं, अगर मैंने कोई कर्म गलत नहीं किए हैं, श्रेष्ठ कर्म की मेरी खातिरी, कोई पास्ट के हिसाब से कुछ हुआ भी, तो बाबा इसमें मदद करके उसमें पार कर देगा। यही योग है, इसको कर्म योग कहते हैं। और ऐसे समय में कोई भी घटनाएं हों, प्रैक्टिकल में बाबा को हाजिर नाजिर समझो। संगम पर बाबा हमारे लिए बंधा हुआ है, कहां जाएगा, बांध लो उसको सने की रस्सी में। कहते हैं गोपियों ने बांधा, वो रस्सी थोड़ी स्थूल में बांधा, ये प्यार की रस्सी है, स्नेह की रस्सी है, और उसमें बंधा हुआ बाबा है। कहता मैं तो आपके प्यार में बंधा हुआ हूं, लेकिन सच्चे दिल पर साहेब राजी, सच्चाई बहुत प्यारी है बाबा को। इसलिए जो सच्चे बच्चे हैं, बाबा उनके साथ साथ रहता है, उसका अनुभव करो, और उस अनुभव के आधार से अपने जीवन को बिल्कुल कर्मयोगी बना लो, निरंतर योगी बन जाएंगे। कभी ज्ञान चिंतन किया, कभी बहुत अच्छी अच्छी मीठी मीठी रूह रिहान किया, कभी एकदम सब बोझ बाबा को दे दो, बाबा आप तो बैठे हैं ना, ये सब ये जवाबदारियां आपकी, डबल लाइट, ऐसे हल्के बन जाओ कि एकदम फरिश्ता बन गए, लाइट के शरीर में चले गए, इसका बोझ खत्म। और फरिश्ते रूप से बाबा को बोलो, बाबा इस शरीर को, इस लाइट के शरीर को आप यूज करो, बाबा इस मिट्टी की देह को तो इतना यूज नहीं कर पाएगा उसके यज्ञ में जो हम सेवा करेंगे, लेकिन बाबा लाइट के शरीर को कभी भी यूज कर सकता है, कहीं पर भी भेज सकता है, साक्षात्कार करा सकता है, भक्तों की मनोकामनाएं पूरी करा सकता है, लेकिन इतनी लाइट होंगे तो। तो ऐसा अपना एक बहुत सुंदर शरीर लाइट का अपने चारों तरफ अनुभव करो। इसके लिए बाबा कहता है जब योग में बैठते हो ना, तो ऐसे ही मर्ज करो, एक लाइट हूं, माइट हूं, एक चैतन्य शक्ति हूं, इस भ्रकुटी में एक दीपक की तरह मैं चमक रहा हूं, और मेरे चारों ओर बहुत सुंदर लाइट का ओरा है, उस लाइट के ओरे के बीच में, उस आभा मंडल के बीच में मैं शरीर से ऊपर उठ गया, और उस लाइट के शरीर के साथ में बाबा के पास पहुंच गया। वतन में चले जाओ, बाबा उसी शरीर में है, उसी ओरे के अंदर पवित्रता का ओरा है, वो पवित्रता की लाइट है, और उस लाइट के बीच में बाबा का सिर्फ फेस दिखाई देता है वतन में। एक बार मैंने गुलजार दादी के साथ बैठा था, रो रिहान कर रहा था, पिछले साल ही, ज्यादा समय नहीं हुआ, दादी से अचानक पूछा कि दादी आप वतन में जाती हैं तो कभी, कहती मैंने शिव बाबा से बात की, कभी ब्रह्मा बाबा से, तो शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा से बात करने के में अंतर क्या है? तो दादी हंसने लगे, कहती है अंतर बहुत बड़ा है। क्या अंतर है? बोली जब ब्रह्मा बाबा से मैं बात करती हूँ ना तो ये साकार शरीर दिखाई देता है पूरा ही, जैसे स्थूल में कोई साकार शरीर द्वारा बात कर रहा हूं, लेकिन जब शिव बाबा से बात करती हूँ ना तो बाबा का यही लाइट का इतना फेस आता ब्रह्मा बाबा का, और उसमें वो ज्योति चमकती हुई दिखाई देती है। निराकार से तो बात हो भी नहीं सकती, निराकार अगर कोई रिस्पॉन्ड करेगा तो कैसे करेगा? तो जब शिव बाबा से मैं बात करती हूँ तो ब्रह्मा बाबा का वो लाइट का फरिश्ते वाला शरीर दिखता है, और उस फरिश्ते वाले शरीर में शिव बाबा, जैसे डबल लाइट, शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा की दोनों लाइट चमक रही हैं। वो मिट्टी का शरीर नहीं दिखाई देता, लेकिन ब्रह्मा बाबा से लगता है साकार में जैसे मिल रहे हैं। तो ऐसे ही जब अव्यक्त वतन का अनुभव करना है तो लाइट के शरीर से लाइट के शरीर के साथ मिलना है, मतलब ब्रह्मा बाबा का जो बाप दादा का जो लाइट का शरीर वतन में है, जब हम वैसे बन करके बाबा से मिलेंगे तो रूह रिहान अच्छी होगी, नहीं तो उस रूह रिहान में मेहनत है। हम मिट्टी की ड्रेस वाले हैं, वो लाइट की ड्रेस वाला है, समानता नहीं है तो मिलन भी नहीं है। इसलिए बाबा कई बार कहते हैं जोड़ी वो अच्छी लगती है जो समान होती है, साथ साथ वही रह सकता है जो समान है। अगर आप मिट्टी की ड्रेस को उतार नहीं पा रहे हैं, इसका भान बना हुआ है, इसके संकल्प विकल्प चल रहे हैं, तो आप लाइट की ड्रेस में जा ही नहीं सकते। तो लाइट की ड्रेस को बार बार इमर्ज करना है। कैसे इमर्ज करना? बहुत अच्छे अच्छे चिंतन से, शुभ संकल्पों से, जितने पवित्र शुद्ध संकल्प हल्के संकल्प हैं उतना सुंदर लाइट का ओरा है, और उस लाइट के ओरे में बिंदु रूप आत्मा चमक रही है। ऐसे लाइट का अनुभव करो और धीरे धीरे ऐसे लगे कि जैसे मैं बाबा के वतन में पहुंच गया, और कोई हलचल नहीं, संकल्प नहीं, बाबा सामने है, मैं बाबा से बात कर रहा हूं। फिर बाबा उस शरीर को कहीं भी भेजेगा, बच्चे जाओ, इस बच्चे को बहुत दुख है, जाओ वहां शांति दे आओ, शक्ति दे आओ, सकाश दे आओ। उस शरीर से बाबा सेवा कराएगा। हम सेवा क्या करेंगे? बाबा को जहां चाहिए यूज करे, कभी किसी स्थान पर भेजे, कभी किसी स्थान पर भेजे, तो फरिश्ते स्वरूप से सेवा करो। इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ऐसे नहीं होगा। अमृत वेले कभी बैठो इस भान में, कभी शाम के समय आधा घंटा बैठ जाओ। कईयों को तो फुर्सत नहीं मिलती, इतना बिजी हो जाते हैं जाकर के, लेकिन इसके लिए फरिश्ते स्वरूप की सेवा करने के लिए कुछ समय एकांतवास चाहिए, तपस्वी स्वरूप चाहिए, जिसको हमको कहा गया अव्यक्त स्थिति, अशरीरी स्थिति। उस अशरीरी स्थिति में फरिश्ते की ड्रेस पहन करके आप सेवा कर सकते हैं। अशरीरी माना शरीर नहीं है, ऐसा नहीं है, शरीर है लेकिन वो लाइट का शरीर है, और उस लाइट के शरीर के साथ वो सेवा करता है। बिंदु रूप स्टेज अलग है, बिंदु रूप स्टेज के अंदर इस शरीर का भान भी नहीं रहता, अशरीरी स्थिति के अंदर वो लाइट का शरीर है, उसको विदेही भी कहते हैं, अशरीरी भी कहते हैं, अव्यक्त भी कहते हैं। तो उस लाइट के शरीर को जब इमर्ज कर लेते हैं तो फरिश्ते ड्रेस में, जैसे हम बहुत हल्के हैं और हल्की चीज जैसे उड़ती है, कोई बोझ नहीं, कोई बंधन नहीं, और बाबा हमको यूज करके कहीं भी जा करके सकाश दे आता है। इसके लिए बाबा कहता है एकाग्रता का बहुत अच्छा अभ्यास चाहिए। संकल्पों की भी एकाग्रता है, शरीर भी एकाग्र है, ज्यादा हलचल नहीं है, और संस्कारों की भी एकाग्रता है। और जितनी एकाग्रता हो जाएगी, आप बिल्कुल स्थिर होकर बैठ जाएंगे तो लाइट का शरीर आप अनुभव करेंगे, और बाबा ऐसे लगेगा बहुत दूर दूर की आत्माओं को अनुभव करा रहा है। कभी कहेगा बच्चे ऊंची पहाड़ी पर आ जाओ, ऊंची चोटी पर बैठ करके सकाश दो, लाइट दो। जो वृत्ति से वायुमंडल बनाने की बात है, जितनी वृत्तियां हमारी बहुत शुद्ध और पवित्र बनती जाती हैं, भावनाएं हमारी अच्छी हो जाती, संकल्प से भी सूक्ष्म वृत्तियां हैं, और वृत्तियां ही व्यक्ति की चंचल है। संकल्प को भी कई बार कंट्रोल कर लेते हैं, लेकिन वृत्तियां माना ऐसा एक दृष्टिकोण बन गया है, ऐसा एटीट्यूड बन गया है, किसी को भी देखेंगे ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है। वृत्तियों में कोई बात चली गई अंदर, देखा सुना बात की, और वो बात अंदर हमने बिठा ली, उसकी वृत्ति बन गई। जो बात संकल्प में बार बार रिवाइज की जाती व्रत की तरह, ऐसे ऐसे बार बार जिस बात को आप रिपीट करते रहते हो, वही बात आपकी वृत्ति के अंदर चली जाती है। इसलिए बात आई और खत्म कर दिया, संकल्प उठा और फुल स्टॉप लगा दिया, तो वृत्ति नहीं बनेगी। जब तो संकल्प को आप घेरे के अंदर आ गए, आधा घंटा आप गए बैठे हैं, कोई संकल्प आपको किसी ने दे दिया, नेगेटिव कुछ हो गया, कोई नुकसान हो गया, सोचते रहो सोचते रहो सोचते रहो, बार बार वही रिपीट होता रहे, क्या होगा, उसकी वृत्ति बन जाएगी। और जैसी वृत्ति बन गई, फिर वैसा ही दृष्टिकोण हो गया, और वैसा ही आप सब देखने लगे सबको, ये भी ऐसा है, ये भी ऐसा है, ये भी ऐसा है, सब गलत है। तो वृत्ति से वायुमंडल बन गया, नेगेटिव वृत्ति से नेगेटिव वायुमंडल बन गया। और अगर हम एक ही बात, जैसे मंत्र को कह, क्या है मंत्र, मंत्र क्या है, ओम 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 मंत्र जप रहा है, और बार बार जपते 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 भी जब अंदर चला गया, वो वृत्ति में चला गया, तो मंत्र सिद्ध होने लगा। एक ही शब्द को बार बार रिपीट किया तो वृत्ति बन गई, और वो मंत्र फिर सिद्धि में चला गया तो वृत्ति में आया, और वो वायुमंडल बनाने लगा, सिद्ध होने लगा। तो बाबा चाहता है कि मेरे बच्चे ऐसे शुद्ध संकल्प करते करते, उनको रिवाइज करो, रिपीट करो अंदर अंदर, जो आपको लगे ड्रामा कल्याणकारी है, ये सब कल्याण के कार्य हो रहे हैं, बाबा आया है, सत्ययुग बनने वाला है, ये संकल्प भी तो है ना, इन संकल्प को रिपीट करते रहेंगे, सब अच्छा है, सब अच्छा है, सब कल्याणकारी, सब अच्छा है। तो वृत्ति आपकी अच्छाई की चली गई, तो आप जिसको भी देखेंगे क्या देखेंगे, ये अच्छा है, ये अच्छा है, ये अच्छा है। वायुमंडल क्या हो जाएगा, आप भी सबको अच्छे लगेंगे, वो भी अच्छा लगेगा। तो वृत्ति से वायुमंडल माना कि वृत्ति के अंदर हर आत्मा की विशेषताएं समाई हुई हो, हर आत्मा इस संगम युग पर बहुत अच्छी विशेष है, जिसको भगवान ने चुना है, जिस पर भगवान की दृष्टि पड़ी है, कम से कम वो तो विशेष है ही ना। और जिनके साथ हमारा पार्ट है, जो हमारे साथ आए हैं, वो भी कोई ना कोई विशेषता लेकर के आए हैं, वो भी बहुत विशेष है। अगर उन विशेषताओं पर आपका ध्यान जाएगा, विशेषता देखने का आपकी आदत बन जाएगी, तो जो नेगेटिव वातावरण घर के अंदर क्रिएट हो जाता है, वो अपने आप खत्म हो जाएगा। अगर उसकी कमी कमजोरी का वर्णन करो, चिंतन करो, भले उसके सामने नहीं करो, पीठ पीछे करो, तो वो बात भी उसके तक अगर पहुंच गई तो दृष्टिकोण बदल जाएगा, और दृष्टिकोण बदलने से घर का वायुमंडल नेगेटिव बन जाएगा, वहां झगड़े शुरू हो जाएंगे। भले ऊपर ऊपर कोई नहीं बोल रहे, आमने सामने भी नहीं बोलते, लेकिन पीठ पीछे भी अगर हम कोई बात किसी के लिए बोल दी, निकल गई, और वो बात उसके कानों तक पहुंच गई, तो उसकी वृत्ति के अंदर चली जाएगी, और वृत्ति के अंदर जाने के कारण आपस का जो टकराव है वो बन जाएगा। भले बोल चाल में ना आए, लेकिन अंदर अंदर एक दूसरे की कमियां अवगुण दिखाई देने लगेंगे, और उससे वातावरण में भारीपन आएगा और घर में कलह पैदा कर देगा। इसलिए बाबा चाहता है कि मेरे बच्चे ऐसी वृत्तियों में रहें, किसी के प्रति भी ना ऐसा सोचो ना ऐसा बोलो, सब ठीक है, सब विशेष है, कुछ न कुछ विशेषता लेकर के आए हैं। और देखेंगे सचमुच, अगर आप पांच लोग घर में रहते हो, सब एक जैसे नहीं होंगे, हर आत्मा की अपनी विशेषता होगी। मैं अपने आप ऑफिस में देखता हूं, पांच छह लोग हम काम करते हैं, सब अपनी अपनी क्वालिटी के हैं, एक जैसे मेरा कहने अनुसार सब करेंगे ऐसा नहीं है, लेकिन अगर मैंने इनको परख लिया कि ये व्यक्ति को ये बहुत अच्छा आता है, ये बहुत अच्छा काम कर सकता है, और उसी तरह से उसको यूज किया, उसी तरह से उसको सेवा दी तो वो सहयोगी भी अच्छा बन जाता है, काम भी अच्छा हो जाता है और कभी भी एक दूसरे के साथ खिटपिट भी नहीं होती। अगर हम उससे एक से ये जो कर सकता है उसको कहूं ये तू कर, यही तुझको करना चाहिए, यही मेरी श्रीमत है या मेरी राय है, तो करेगा जरूर, जबरदस्ती करेगा, लेकिन वो खुश नहीं होगा, संतुष्ट नहीं होगा। इसलिए बाबा कहता है परिवार में जो व्यक्ति जैसे हैं, हरेक की अपनी क्वालिटी है, उसकी विशेषता है, उसको नोट करो, उस पर ध्यान दो और उसी विशेषता से उसको कार्य में लगा लो, सहयोगी बना लो, तो खुश रहेगा, संतुष्ट रहेगा और वायुमंडल शक्तिशाली रहेगा। तो वृत्ति से वायुमंडल का अर्थ ये नहीं है कि आप योग में बैठ गए, वृत्ति से सेवा कर रहे हैं, वायुमंडल बन रहा है, लेकिन वृत्तियों से, दृष्टिकोण से एक आपसी वातावरण के अंदर परिवर्तन दिखाई दे, सब बहुत प्रिय लगे, सब अच्छे लगे। उसके लिए एक ही विधि है कि विशेषता देखने का चश्मा होना चाहिए, बस हर एक के अंदर है। बाबा कई बार कहे, मुरली चलाई है कि मान लो आपने लाल चश्मा पहन लिया, आप घास के अंदर खड़े हैं तो घास भी लाल लाल दिखाई देगी, है हरी है, कमियां ऐसा नहीं नहीं है कमियां, आपके अंदर तो कमी नहीं जाएगी। इसलिए चश्मा पहनने की भले मजबूरी है या आदत है या फैशन है, विशेषता देखने का चश्मा हरेक के पास होना चाहिए। हर आत्मा में कुछ न कुछ है विशेषताएं, तो विशेषता देखेंगे तो वृत्तियां बहुत शुद्ध होती जाएंगी और शुद्ध वृत्तियों से वायुमंडल अच्छा बन जाएगा, विघ्न खत्म हो जाएंगे। ये हद में भी और बेहद में भी ये सेवाएं करनी है। जैसे यहां का वायुमंडल क्यों सबको आकर्षित करता है, कहो या न कहो आप पांडव भवन चले जाओ, अपने आप ऐसे लगता है बड़ी शांति है, बड़ा अच्छा लगता है, बड़ा अच्छा लगता है। क्या अच्छा है? वायुमंडल अच्छा है। वायुमंडल कैसे बना है? वहां रहते हैं, देखते हैं, 6 बजा है, कोई बोल ही नहीं रहा, सब योग में बैठे हैं, कोई बाबा कमरे में बैठा है, कोई हिस्ट्री हॉल में बैठा है, कोई शांति स्तंभ पर बैठा है, कोई मेडिटेशन, सब योग ही कर रहे हैं। अब सबकी वृत्ति जब एक जैसी शुद्ध है, पवित्र है और साइलेंस का वातावरण है, तो वायुमंडल अपने आप उस स्थान का खींचने लगा सबको। कोई भी प्रवेश कर जाए तो एक बार तो कहता है बड़ा अच्छा स्थान। बाबा ने वृत्ति से बनाया, दादियों ने तपस्या करके बनाया, अब जब यहां जो रह रहे हैं वो निमित्त आत्माएं अगर इतना टेंशन रखते हैं, कोई गलत होते हैं, 100 में एक आधा गलत भी सोच रहे हो, कई बार अच्छे लोगों का जब वायुमंडल बन जाता है तो बुराई दब जाती है। कई बार कहता है बाबा तो अगर कोई नीचे ऊपर होता है ना तो मैं आने वालों के ऊपर चश्मा लगा देता हूं, उनको दिखाई नहीं देता है गलती हो रही है। हम लोगों को लगता है अरे ये इतना जोर से बोल रहा है। एक बार बताओ, यहां ज्ञान सरोवर में मेरी एक कॉन्फ्रेंस चल रही थी, मैंने किसी को बोला तुम गाड़ी ले आना, उसके निमित्त बहन ने यहां नोट करा दिया होगा, हमने सोचा वीआईपी है, मैं अपनी गाड़ी मंगा दूं। जब अपनी गाड़ी आ गई और उसने गाड़ी वाले को यहां बोल दिया तो टैक्सी भी आ गई, दो गाड़ी आ गई, अब दोनों झगड़ने लगे। उसने कहा मुझे बुलाया, उसने कहा मुझे, मैं देख रहा था वहां झगड़ा चल रहा है और वीआईपी मेरे साथ खड़ा है, मैं डर रहा हूं कि इसको क्या नोट करेगा, यहां भी गुस्सा करते हैं लोग, अब जोर जोर से वातावरण बनने लगा। लेकिन उसको कुछ असर नहीं हुआ वीआईपी को, वो समझते होंगे ये तो होता ही है थोड़ा बहुत, लेकिन हमको तो अंदर लग रहा था देखो ठीक नहीं हो रहा है, ये अपने भाई लोगों को ये नहीं बोलना चाहिए, चुप हो जाना चाहिए, शांत हो जाना चाहिए। शांत करने की कोशिश की लेकिन एक आवाज तो बनी, तो आवाज में बोल रहे हैं लेकिन बाबा कई बार कहता है ऐसे समय पर मैं चश्मा लगा देता हूं, उनको दिखाई नहीं देता है। बाबा भी तो यज्ञ के रक्षक है ना, लेकिन ध्यान ही रखना चाहिए, ऐसा नहीं हम करें भले दूसरे लोग देखें, अटेंशन, कोई भी गलती हो सारी कर लो। हमारी दादी जी एक बात बहुत अच्छी कहती थी, अगर कोई गलती हो जाती है सारी कर लो, तुम्हारी साड़ी थोड़ी खराब हो जाएगी, कुछ भी अगर हो गया नीचे ऊपर तो सारी कर लो, हार मान लो, हार्मनी हो जाएगी, हार मान लो, हार्मनी हो जाएगी। तो ऐसी ऐसी बातें, ऐसी ऐसी शिक्षाएं जो हमको बड़ों ने दी है, अगर सचमुच प्रैक्टिकल में एक सेकंड में हम कोई बात हो गई, प्लीज स्टॉप, नहीं सोचना, नहीं बोलना, रिस्पॉन्ड नहीं गलत देना, तो वातावरण अच्छा बन जाएगा, वृत्तियां अच्छी रहेंगी, तो वृत्ति से वायुमंडल की सेवा अपने आप होती है। और वृत्तियों को ज्ञान से, अच्छी अच्छी ज्ञान के चिंतन से बार बार रिवाइज करो, सुनाओ, दूसरों तक लाओ, तो वृत्तियां ज्ञान की बन जाएगी, चंचलता उसकी समाप्त हो जाएगी। और कई बार बाबा कहते हैं अगर वृत्तियों को कंट्रोल करना है तो व्रत लो। वृत्तियां चंचल हैं, क्योंकि बहुत सारी बातें ऐसे ऐसे सोच सोच करके वृत्तियों को हमने चंचल बना दिया है, इसलिए व्रत ले लो। मेरा तो एक बाबा, दूसरा ना कोई, मैं तो सुख दूंगी सुख लूंगी, यही व्रत है मेरा। एक बल एक भरोसा, में कोई पर भरोसा नहीं, बाबा में पूरा भरोसा है। तो ऐसे संकल्पों का अगर व्रत ले लेते हैं ना, तो वृत्ति अपने आप चुप हो जाती, शांत हो जाती। तो अच्छी वृत्ति से अच्छा वायुमंडल क्रिएट हो जाता है। तो ऐसे हम सब वृत्ति से वायुमंडल बनाएं और विदेही या शरीरी स्थिति से विश्व कल्याण की सेवा करें और प्रैक्टिकल हर कर्म में बाबा को साथी बना करके कर्म करें, तो कर्मयोगी स्थिति बन जाएगी। बीच बीच में अभ्यास करना है, क्योंकि जो हमारे कड़े निजी संस्कार जो बार बार इमर्ज होते हैं, उनको जलाने की जरूरत है। अगर जलाओगे नहीं ना, तो कभी भी वो अंकुरित हो जाएगा। जैसे आपके पास कोई बीज रखे हों, आपने एक मटके के अंदर आपने किसी स्थान पर बंद करके उनको रख दिया, लेकिन जब भी बाहर निकलेंगे, अगर वो ठीक बीज रह गए, तो मिट्टी पानी हवा का जब उनको साथ मिलेगा तो अंकुर निकल आएगा। लेकिन अगर बीज को आपने भुना लिया, भून दिया, तो भले कभी भी निकालो, पानी मिले, मिट्टी मिले, धूल मिले, कुछ भी मिले, उसमें अंकुर नहीं निकलेगा। ये जो हमारे संस्कारों का बीज है, जब तक हम बहुत अच्छी तपस्या से बीज रूप स्थिति से उस बीज को संस्कार नहीं करेंगे, जलाएंगे नहीं, तब तक वो संस्कार खत्म नहीं होगा। चाहे 15 साल 20 साल ज्ञान में हो जाए, वो बार बार इमर्ज होगा, बार बार आएगा। जब समय मिलेगा वही गुस्से के संस्कार इमर्ज जाएंगे, वही काम विकार की वासनाएं जागृत हो जाएंगी, वही लोभ वृत्तियां जागृत हो जाएंगी, क्योंकि उन संस्कारों को महसूस करके, रियलाइज करके, योग के बल से उनको समाप्त नहीं किया। इसलिए जब भी समय मिले ऐसे एकाग्रता से बाबा की याद में बैठो कि बाबा की वो किरणें मुझ आत्मा पर आ रही हैं और मेरे पास्ट के संस्कारों को जला रही हैं, वो समाप्त हो रहे हैं। उसके लिए पावरफुल योग चाहिए, जिसमें एकाग्रता बहुत अच्छी चाहिए। एकांत भी है, एकाग्रता भी है। ऐसे एकांत और एकाग्रता के अभ्यास से बाबा की किरणों के आधार से हम संस्कारों को परिवर्तन कर सकते हैं। संस्कार चलते रहते हैं, चलते रहते हैं। भले कितना भी अच्छे संग में रहो, अच्छा भोजन करो, अच्छे परिवार की पालना में रहो, लेकिन चेंज नहीं होते, दब जाते हैं, कुछ समय दब जाते हैं। लेकिन जब ऐसी कोई परिस्थिति आती है, ऐसी कोई बात होती, पेपर आता है, तो संस्कार जागृत हो जाते हैं। इसलिए संस्कारों का संस्कार करना, उसके लिए तपस्या चाहिए, बीज रूप की स्थिति चाहिए, बहुत पावरफुल याद जिसमें कोई हलचल नहीं। उसके लिए आप चले जाओ बाबा के पास निराकारी वतन में, लाइट माइट होकर के बैठो। सिर्फ कमेंट्री से योग करने का अभ्यास नहीं करना, भले कितनी भी अच्छी कमेंट्री चल रही है, फिर भी ध्यान उसके रस की तरफ जाता है। लक्ष्य जरूर दो, लक्ष्य दे करके एकदम उसका अनुभव करो, कम से कम 10 मिनट उस अनुभव के अंदर समा जाओ। उसके बीच में कोई आवाज की, गीत की भी जरूरत नहीं, कमेंट्री की भी जरूरत नहीं, ट्यून की भी जरूरत नहीं, बिल्कुल साइलेंस, स्वीट साइलेंस। हाँ, जब ऐसा भारी वातावरण है, नींद का वातावरण है, लग रहा है, अच्छे अच्छे गीत बजाओ, खुशी में डांस करो। उस समय ऐसा नहीं हम बीज रूप बन करके बैठ जाएं, नहीं, बीज रूप बन रहे हैं, रू ध्यान करो, अच्छे गीत सुनो, मनन करो, चिंतन करो, बोर तो नहीं होंगे ना। अब उस समय कहो अभी सुस्ती का वातावरण है, हम बिल्कुल बीज बन करके बैठे, 5 मिनट आप शांत बैठ जाएंगे, धीरे धीरे नींद आ जाएगी। इसलिए समय अनुसार जब देखते हो बहुत अच्छी स्थिति में हम बैठे हैं, अभी कोई हलचल नहीं है, बहुत अच्छा वातावरण है, एकदम बीज बन के बैठ जाओ और उसके लिए बहुत अच्छा समय। मैंने देखा कई बार अमृत वेले से भी अच्छा समय नमाज शाम का होता है, 6:30 से 7:30 एकदम एकाग्रता से तपस्या करो। सब कारोबार समेट दिया, फ्रेश होकर के स्नान पानी करके बैठ गया करके आपकी बीज रूप स्टेज बन जाएगी। 24 घंटे में एक घंटा, एक बार तो बाबा ने एक मुरली चलाई थी, एक मिनट भी अगर उस शरीर स्थिति में, उस बीज रूप स्थिति में आप बैठ गए बहुत पावरफुल, तो उसका कई घंटे तक असर रहेगा। बोलने की दिल आवाज में आने की दिल ही नहीं करेगी, वो एक मिनट भी वो क्या स्टेज होगी जिसमें एकदम स्वीट साइलेंस। डेड तो होना नहीं है, अनुभव के संकल्प तो रहेंगे ही, डेड तो तभी होंगे जब ऊपर चले जाएंगे, वहां कोई संकल्प नहीं होंगे। इस शरीर के अंदर हैं तो स्वीट साइलेंस, कोई और हलचल नहीं, बहुत अच्छे अनुभव के संकल्प हैं, अपने स्वरूप का चिंतन है, स्वधर्म का चिंतन है, स्वदेश का चिंतन है, स्वपिता का चिंतन है। बैठ जाओ, ऐसे है चिंतन भी है लेकिन बहुत हलचल वाला नहीं है, फास्ट नहीं है। तो अभी 12 बजने वाला है, हम 10 मिनट के लिए ऐसा अभ्यास करेंगे। अभी तो अच्छा वातावरण है ना, बैठ सकते हैं ना जी। किसमें संस्कार जो है ना वो अंदर चले गए हैं, कर्म करते करते वृत्ति बनी, वृत्ति के बाद और गहरा बन गया संस्कार। संस्कार जो है ना, संस्कारों को बताया ना, बीच बीच में कभी कभी जो पास्ट का किया हुआ कर्म है ना, 84 जन्मों में 63 जन्मों देह मान के कारण, तो वो वृत्ति से अंदर संस्कारों में चला गया, और अंदर की बात है संस्कार, संकल्प से वृत्ति, वृत्ति से संस्कार बन गए। जब वृत्ति में बार बार कोई बात आती ना, रिपीट होती रहती, कर्म में आए, पहले बोल में आए, फिर कर्म में आए, फिर संकल्प आए, फिर संकल्प से वृत्ति बनी, और वृत्ति में आते आते वो अंदर पक्का हो गया, उसको कहते संस्कार बन गया, पक्का हो गया। जैसे उसको संस्कार इतनी जल्दी नहीं चेंज होता। एक बार जगदीश भाई ने एक लेख लिखा था, कुत्ते की टेढ़ी पूंछ। कहते किसी व्यक्ति ने सोचा कि इसको सीधा कर दूं मैं, तो एक पाइप में उसकी पूंछ को डाल दिया। 12 बजने वाला है तो उसको फिर एक साल के बाद निकाला तो फिर से देखा वो एक टेढ़ी की टेढ़ी। तो संस्कार ऐसी चीज है जो बड़ी जल्दी नहीं, कितना भी उनके लिए मेहनत करो फिर भी ऐसे कैसे टेढ़े कई बार रहते हैं, उसके लिए बहुत अच्छी तपस्या चाहिए। तो ठीक है, अभी 10 मिनट के लिए इस दम भ्रकुटी के बीच में चमकता हुआ सितारा, एक लाइट हूं, एक माइट हूं, एक बहुत सुंदर चमकती हुई मणि हूं, और चारों ओर एक बहुत अच्छा आभा मंडल है लाइट का, और मैं उस लाइट के शरीर से अपने लाइट के वतन में, बाप दादा के अव्यक्त वतन में, फरिश्ता ड्रेस में हूं, और बाबा की बहुत सुंदर सकाश दृष्टि, उनका स्नेह भरा हाथ ऐसे मस्तक पर आ गया है, और बाबा मुझे सब वरदानों से भरपूर कर रहा है, दृष्टि से, वाइब्रेशन से, बहुत पावरफुल सकाश से, वरदानी हाथ से बाबा का सानिध्य अनुभव करूं। जैसे आप देखो कोई से अगर स्नेह होता है, प्यार होता है, और उसके प्यार में अगर हम कोई काम भी कर रहे हैं तो भले काम हाथों से हो रहा है लेकिन बुद्धि उधर लगी हुई है, और कोई दूसरा सामने से क्रॉस करके जाता है तो उसको देखते ही नहीं है, पूछो भाई कहाँ थे, मैं यहाँ नहीं था, मैं तो कहीं दूसरी जगह था। तो भले प्रेजेंट यहाँ है लेकिन बुद्धि की तार बाबा के साथ ऐसी जुटी हुई है, एकाग्र है कि एक ही लगन में मगन है। इसमें संकल्प कोई शून्य नहीं है, जड़ नहीं है, लेकिन जो इधर उधर के संकल्प हैं उन संकल्पों पर हमारा कंट्रोल है, हम इधर उधर के संकल्पों को आने नहीं दे रहे हैं। आ रहे हैं कहते अभी ठहरो, तुम्हारी अभी जरूरत नहीं, अभी हमारी उससे बात हो रही। तो एकाग्रता जड़ता नहीं है, शून्यता नहीं है, लेकिन एक की लगन में मगन हो जाना, एक के स्नेह में खो जाना, व्यर्थ और नेगेटिव से बच के रहना। ठीक है, और कुछ पूछना है? इस एकाग्रता का अभ्यास करते करते आत्मिक स्वरूप स्थिति ही बीज रूप की स्थिति बन जाती है। जब आत्मा का भान रहता ना, शरीर का भान भूल जाता है। जैसे शरीर का भान एक नेचुरल हो गया है, ऐसे अभ्यास करते करते एकदम मैं एक लाइट हूँ, एक माइट हूँ, एक बिंदु हूँ, चमकता हुआ सितारा हूँ, इसकी प्रैक्टिस करते करते उस स्वरूप में स्थित हो जाएंगे तो बीज रूप बन जाएंगे। जैसे बीज से फिर वृक्ष निकलता है, लेकिन बीज में समाया सब कुछ है। तो ऐसे शांति, शक्ति, प्यार, पवित्रता, वो सब गुण उस बीज में समाये हुए हैं। अनुभूति है, थोड़ी थोड़ी अनुभूति है, लेकिन ज्यादा नहीं है, विस्तार नहीं है। तो जब विस्तार को हम सार में ले आते हैं तो बीज रूप बन जाते हैं। केवल शांति का अनुभव है तो भी वो बीज रूप स्थिति नहीं है, लेकिन एक बीज में शांति, प्रेम, सुख, आनंद सब समाया हुआ है और भरपूर स्टेज का अनुभव ही बीज रूप स्टेज है, जिसमें हलचल नहीं है संकल्पों की। ऐसा है कि एक तो उनका तो इस समय बहुत ज्यादा फोर्स है, चारों तरफ से वातावरण के अंदर बहुत सी आत्माएं जो अचानक शरीर छोड़ती हैं, उनको शरीर नहीं मिलते जल्दी, वो भटक रही हैं। कहां जहां भी कोई कमजोर आत्माएं हैं, जहां कोई हिसाब किताब है, वहां वो प्रवेश करती हैं। इसके लिए एक तो स्थान को बहुत चार्ज करने की जरूरत है। जिस स्थान पर आप रहते हैं उस स्थान को इतना चुंबकीय, इतना शक्तिशाली बनाओ जिसके अंदर कोई व्यर्थ बातें, व्यक्तिगत बातें, लौकिक बातें ना हो, अगर बचना है तो। जैसे दुश्मन से बचना होता है ना, तो करंट की तार छोड़ते हैं, तार लगाते हैं, करंट छोड़ते हैं उस पर। ऐसे ही योग के ऐसे संकल्प से घेरा बनाओ, जिस घर में आप रहते हो ऐसे लगे कि चारों ओर वो एक बहुत सुंदर बाबा की छतरी के नीचे हम सब बहुत सुरक्षित रह रहे हैं। तो अगर आपकी स्थिति ऊंची है तो ये कोई भी भटकती हुई आत्माएं आप पर अटैक नहीं कर सकती है। उनका चिंतन ज्यादा नहीं करो। कई बार हम चिंतन से उनका आह्वान कर लेते हैं, ज्यादा वर्णन नहीं करो। अगर किसी में ऐसी प्रवेशता आपको लगती है तो वो परवश स्थिति उनकी, आपको उसका चिंतन न करके उसको योग का दान देना है। एक बार ऐसा ही हुआ था, यहाँ ऐसी आत्मा आई थी तो दादी ने फिर यहाँ पर योग का प्रयोग कराया। सबको, योगी भाई बहनों को जो अच्छे योग करने वाले, उनको कहा इस आत्मा को मुक्त करने के लिए दान करो। तो अगर संगठित रूप में 5-10 लोग भी बाबा के कमरे में अच्छे स्थान पर योग करने के लिए बैठ जाएं, तो ऐसी आत्माएं फिर निकल जाती, भाग जाती हैं। और बहुत ज्यादा अगर कोई हिसाब किताब वाली आत्मा है तो उसके लिए बाबा कहता जैसी बीमारी वैसा डॉक्टर, जब वैसे ही डॉक्टर उनका है। अगर नहीं निकल रही, नहीं, बहुत सारी उसका हिसाब किताब कड़ा है, तो फिर योग भी कई बार उनका काम नहीं करता है। अगर है ऐसे सहज निकल जाती है, तो अगर 10-12 लोगों का अच्छा पॉजिटिव लोगों का संगठित योग है तो आत्माएं अटैक नहीं करती। घर के वातावरण में अगर व्यर्थ और नेगेटिव नहीं है तो भी वो नहीं आती। जहां अशुद्धि है वहां ही वो आत्माएं आती, जहां बहुत शुद्धता है वहां नहीं आती। मंदिर में भूत प्रवेश नहीं करते। अगर हमने अपने मन को मंदिर बनाया है, तन को मंदिर बनाया है, तो कोई भी सोल कितनी भी शक्तिशाली नहीं आएगी। मैंने मन के अंदर कोई अशुद्धियां भरी हुई है, बहुत सारे इधर उधर के कमजोर संकल्प हैं, तो वो अटैक करते हैं। इसके लिए अपने मन को बहुत शक्तिशाली बनाने की जरूरत है। नहीं, कोई भी देखो, तंत्र मंत्र जंत्र आजकल दुनिया की ये लास्ट विद्या है, और जो कराते हैं वो हमारे पर न कराएं, उसके लिए हमको कवच पहनना तो पड़ेगा ना। सुरक्षा कवच अगर हमारे ऊपर है, अगर मेरे पास लाइट का कवच है, मैंने बहुत अमृत वेले उठ करके बाबा की लाइट को ऐसे आह्वान किया है और अपने ऊपर डाल ली, तो कितना भी कोई कराए मेरे लिए क्या करेगा। ध्यान ही रखना है, किसी के हाथ का नहीं खाना है, कोई ऐसा प्रभाव में नहीं आना है, कोई कामनाएं नहीं रखनी है। प्रभाव वहां पड़ता है जहां हमारी कोई न कोई कामना होती है, जहां कोई इच्छा लेकर के हम रहते हैं। भले कितना भी तंत्र मंत्र सिद्धि बुद्धि करे, लेकिन अगर मेरे को कुछ नहीं चाहिए किसी से, मेरा तो एक बाबा दूसरा ना कोई, मैंने एक लाइट का कवच पहना हुआ है, कोई कामना नहीं है, कोई के हाथ का मैं कापी नहीं रहा हूं, कुछ नहीं कर पाएगा। ऐसा है कि संकल्पों को बार बार जनरेट करने की जरूरत नहीं है। जैसे मैं आपको मिसाल बताता हूं, हम कोई को दान नहीं दे सकते, दान तो बाबा को करना है, वो शक्ति बाबा को देनी है। हम सोचते हैं मैं इसको दान दे रहा हूं, ये गलत है। मनसा सेवा का अर्थ ये नहीं है कि मैं किसी को बहुत अच्छी भावना रख करके उसको कुछ दे रहा हूं। ऐसे बैठो जैसे कांच है, साफ है, स्वच्छ है। अगर ये कांच साफ और स्वच्छ है और सूर्य की किरण इसके ऊपर पड़ती है तो स्वच्छ कांच अपने आप रिफ्लेक्ट होता है, उस किरण को रिफ्लेक्ट करता है। और किरण जब रिफ्लेक्ट होती है तो सूर्य की शक्ति से वो किरण की शक्ति ज्यादा होती है, क्योंकि एकाग्र होती है, सूर्य की किरणें विस्तृत में फैली हुई हैं। लाइट अगर एकाग्र होकर के किसी फोकस करके डाली जाती है, पड़ जाती है, तो वहां अग्नि पैदा कर देती है, परिवर्तन कर देती है। आज जितना भी सूर्य की किरणें शक्तियां काम कर रही हैं, उसका यही मूल कारण है, सोलार एनर्जी इतनी पैदा हो रही है क्योंकि उसके साथ हमने कांच को लगाया हुआ है। ऐसे ही बाबा चाहता है कि मेरे बच्चों का ये कांच जो है बुद्धि, वो बहुत स्वच्छ क्लीन हो और मेरे तरफ हो, मेरे से जुड़ी हुई हो। तो मनसा सेवा का अर्थ ये है, शुभ भावनाएं हैं, सबका भला हो, सबका कल्याण हो, सब बाबा से अपना अधिकार ले, मुक्ति ले, जीवन मुक्ति ले, भावनाएं ये हैं, संकल्प ये हैं। लेकिन ये संकल्प बार बार क्रिएट नहीं करना है, एक बार हमने क्रिएट किया, इसके लिए हम बैठे हैं और बाबा की किरणों को हम ले रहे हैं और बाबा की किरणें ऑटोमेटिक सब पर जा रही हैं। योग करो, संकल्प क्रिएट नहीं करो, बाबा की किरणों को अनुभव करो, को शांति की, पवित्रता की, शक्ति की, वो किरणें मेरे तक पहुंची, जहां जरूरत वहां जा रही है, वो आत्मा परिवर्तन हो रही है, उसके संस्कार चेंज हो रहे हैं, वो बाबा का अधिकार ले रही है, उसके दुख दूर हो रहे हैं, ऐसे संकल्प आते हैं।